तेरी मोहब्बत इतनी बढ़ती चलती रहती है अल्लाह तआला की दोस्ती और इतना इतना हम इसका हो गया अल्लाह तआला ने हमें ये नेमत प्रदान करवाई है मेहरबानी और ये बहुत बड़ी नेमत है इसका शुक्र अदा करें जिस जमाने में हम रह रहे हैं
ऐसे मुल्क में जहाँ का बादशाह भी ईमान नहीं ला रहे
तो सहाबी ने जाकर कबीर की दावत दी। उस मुल्क के बादशाह ने पैगाम भेजा कि अच्छा मैं तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन की जो बेटी है वो मेरी बीवी बनने के तैयार हो जाए तो मैं इस्लाम लाने के लिए तैयार हूँ, मैं इस्लाम कबूल कर लूँ। तो सहाबी फरमाते हैं कि मैं आपको पैगाम ले जाता हूँ। लेकिन तो मदीने मुनव्वरा से उमर के बाद में से मुलाकात हुई अमीरुल मोमिनीन और बादशाह भी कह रहा था तो सुनते ही सिर में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तुमने हाँ क्यों नहीं कहा, क्या उमर की जो बेटी की इज्जत है वो किसी भी ईमानदार से भी ज्यादा है? जिस बात पर राजी अपनी बेटी से भी पूछा तो ईमान सबसे कीमती है, जिसने इंसान अपना माल अपनी जान अपनी इज्जत सब कुर्बान कर सकता है लेकिन ईमान को कुर्बान नहीं कर सकता। हम दशाजली का पावर पाएंगे इसलिए हमने ईमान की कदर और कीमत हमने पहचानी नहीं। We don't understand how valuable this neighbor is. And next, हमारा ईमान कमजोर भी है, खतरे में भी है। थोड़ा सा कोई चीज मिलती है और हम ईमान का सौदा कर देते हैं। कुछ दिनों पहले वाक्य सुनाया था शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, दोबारा सुना देता हूँ। अपने बचपन का वाक्य उन्होंने लिखा है कि मैं छोटा था मेरी अम्मी ने मुझे सोने की अंगूठी दी, मुझे पता नहीं था इसकी क्या वैल्यू है, कहां ये बाजार से कोई चीज ले के आ जाए। मैं जब सड़क पर आया तो रास्ते में थक मिला होता है ना, उसके नजर में अंगूठी भी थी। उसने कहा कि बच्चे जो तुम कहने हो ना इसको मुंह में लो, उसको चूस के देखो क्या जायका है। मैंने उसको मुंह में लिया, चूसा तो बिल्कुल बेजायका सी बसों से चीज थी। फिर उसने अपने जीभ से एक हम लेंगे कैंडी, उस जमाने में गुड़ कहते थे, गुड़ पर गुड़ गुड़ की टली, उसने अपने जीभ से गुड़ की जो स्वीट थी जिसमें मिठाई होती है उस तरह की चीज थी, उसने वो गुड़ की डली अपनी जेब से निकाली और बच्चे को कैंडी दी। तो बच्चे उसको खा के देखो बताओ इसका कैसा जाएगा। तो उसने कहते मैंने गुड़ की डली मैंने रखी जबान पर चखी तो वो नहीं थी अच्छा जाएगा, मैंने कहा बहुत पीछे है हजरे किया। तो उसने ठग ने कहा कि ऐसा करो कि जो बेजायका चीज है ना तुम्हारे ये मुझे दे दो और ये जो मीठी चीज है ये मुझसे ले लो। और कहता है कि मैं ये सौदा करने के लिए तैयार हो गया। आज हम जिस जमाने में रह रहे हैं तो वहां हमारा बिल्कुल यही मामला है कि ये जो दज्जाली कुव्वतें हैं शैतानी कुव्वतें हैं जो अल्लाह ताला को नाम मानने वाली कुव्वतें हैं, ये कुव्वतें हमसे ये सौदा कराना चाहते हैं कि वो दुनिया की गुड़ की डली हमें दे रहे हैं कि हम जो दुनिया की गुड़ की डली ले लो उस अपने ईमान का सौदा करें। और बहुत सारे अच्छे बड़े लोग हैं जो सौदा करने को तैयार हो जाते हैं, दुनिया की गुड़ की डली मिल जाती है लेकिन ईमान का सौदा नहीं देती। आप देखें कि कादियानी अकीदत के कितनी मिसाल है कि उनको कहा जाता है कि अब ऐसा करें कि बस इस पर सिग्नेचर कर दें, इसको साइन कर दें डॉक्यूमेंट को, हम आपको यूके के अंदर सिटीजनशिप भी दे देंगे, वहाँ रहने की जगह भी दे देंगे और वहाँ आपको इतना पैसे असाइनमेंट भी दे देंगे। और मजबूरी पर अगर हमने डॉक्यूमेंट साइन कर दिया तो मुसलमान ही नहीं रहेंगे, वो अपना ईमान का सौदा कर देते हैं, वो ईमान को छोड़ के कामयाबी बन जाते हैं और उसके बदले को भी इतनी सारी चीजें मिल रही होती हैं कि हम अमेरिका जाते हैं, इन दफा ऐसे लोगों से हम मुलाकात होती है तो वाकई पूछते हैं कि कैसे आना हुआ, तो ज्यादातर यही होते हो कि बस हम पाकिस्तान में थे या इंडिया में थे, इंडिया वाले भी और यहाँ एक लोग हैं का नाम उनका कारोबार भी चल रहा है, बच्चे भी हैं, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मिलती है सिटीजनशिप, कहते हैं क्या मेरे आयश की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो मैं सोचा कि हम सब माइग्रेट हो जाते हैं, कोई कैनेडा चला गया, कोई यूएस चला गया, अब चले तो गए लेकिन अब वहाँ जाके अपना ईमान से इंसान कुछ ना कुछ करके बचा लेते हैं, लेकिन अब परेशानियों को इस बात की होती है हमारे बच्चों को देख रहे हैं कि नशे कबा हो गए, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, रिबेलियस हो गए और किस तरह के सवाल आते हैं, हमें तो सवाल भी नहीं समझ में आ रहे दीन के बारे में, शुकूक और शुबहात, हमें तो कुछ शुकूक शुबहात ही समझ में आ रहे और उनका जवाब कैसे दें, तो अपना इंसान अगर ईमान बचा भी ले इस तेजी से कुवतें मिल रही हैं, अपनी अगली नस्ल का ईमान बचाना मुश्किल होता है ऐसे माहौल के अंदर, और बाकी जो वहाँ ये मुजाहिदा कर रहे हैं वो बहुत बड़ा मुजाहिदा है, वो अपने बच्चों को स्कूल ही भेज सकते ना तो होम स्कूल देके, क्योंकि अगर बच्चे स्कूल में जाएंगे तो एलिमेंट्री ग्रेड से वो उनको इस तरह की चीज़ें बातें बताई जाती हैं कि उनका ईमान बिगड़ जाता है, और वहाँ पे अमेरिका के अंदर यहाँ पे इतने राइट्स होता है उनके कि माँ बाप बच्चों को कुछ कह भी नहीं सकते, अगर उन्होंने कुछ कहा कि ऐसा नहीं है ऐसा है तो बच्चों के पास पूरी यहाँ पर राइट टू कॉल द पुलिस बेचारे वहाँ माँ बाप भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने बिगड़ते हुए देख रहे हैं और हमारी इतनी हालत हो चुकी है, बुरी हालत हो चुकी है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कहते तो हमें डर होता है कि कोई हमारे बराबर के अंदर में रिपोर्ट ना करे, तो ये बुनियादी तौर पे इस वजह से होता है कि हमने अपने ईमान की कदर नहीं पहचानी, ये क्यों होता है कि यहाँ पर कभी हमारे से वैल्यू होगा भी नहीं हो, हाउ वैल्यूबल हाउ प्रेशियस आवर ईमान है, जिसके दिल के अंदर ईमान की वैल्यू पैदा हो जाए ये मेरी सबसे अहम तरीन नियमत है, सबसे कीमती नियमत है, तो फिर वो हर सौदा को ढुंढा देगा, ईमान को बचाएगा, ईमान की खातिर वो हर चीज़ करने के, ईमान को बचाने की खातिर हर चीज़ करने के लिए तैयार हो, तो इंसान कहते हैं कि मैं सादा जिंदगी गुजार लूँगा, सादा खा लूँगा, सादा पहन लूँगा, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं करूँगा, तो ये बुनियादी तौर पर एक चॉइस है जो हर बंदे को आज के ज़माने के अंदर फेस करनी पड़ती है कि हमें दुनिया की गुड़ की गलियाँ मिलेंगी और लोग भी हमें देंगे, बातें भी ऐसी होंगी, हमारा आम माशरा भी ऐसा है कि जिससे बात करो तो दुनिया दुनिया बनी है, तो दुनिया की हालत है, दुनिया की हिस्स है, दुनिया को हमने अपना मकसद ज़िंदगी बना लिया, बजाय ज़रूरत से ज़िंदगी बनाने के, जिस तरह और ज़रूरियात है, खाना पीना ज़रूरत है, दुनिया को कमाना भी उस वक्त जरूरत है, लेकिन हमने इसको अपना मकसद जिंदगी बना लिया है और फिर इसके तहत इंसान अपने ईमान का सवाल कर रहा है। अगर ईमान नहीं पूरा जा रहा तो उस पर उस पर आँच आ रही होती है, कमी हो रही होती है। ये आजकल का बहुत बड़ा इम्तिहान है और इस वजह से मुझे याद है कि जब हम भी थे कि आप लोगों से अगर लोग मैंने शेयर की राहुल से तो यूएस तो आया करती थी मैं पी एच डी अगर पोस्ट डॉक की अपॉर्चुनिटी थी टीचर्स उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर नहीं सवाल यही था कि शुड बी कंटिन्यू रिमेन देयर या शुड आई कम बैक। इस मौके पर अपने श्री गजर जी से मुलाकात का मौका मिला जी, तो मैं मेरे घर वाले दोनों आए जी से बात किया तो अभी जैसे ऐसी सूरत हाल है पी एच डी मुकम्मल हो चुका है वहाँ डॉक्टर है लेकिन कल पाकिस्तान में ज़्यादा सुकून है तो हमें क्या करना चाहिए। तो अभी ने ये जुड़ा फरमाया था कि अगर आपको वहाँ रहना है तो वहाँ बहुत सहूलियत है, बहुत अच्छी सड़कें हैं, अच्छे कांच जो निज़ाम है, रूल है, लॉ है। इस एतबार से जो वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका कैनेडा दीज आर वे 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 बियॉन्ड पाकिस्तान बहुत तरक्की है, बहुत ही ज़्यादा कंट्री है, आपको इन चीज़ों की कोई परेशानी नहीं होगी वहाँ रहने की। अकबर का वहाँ रहते थे नाजर था और उसके बरस अगर पाकिस्तान में वो होते हैं तो फिर यहाँ आपको ये सारे मसाइल पेश आएंगे, पानी का मसला, बिजली का मसला, सड़कों का मसला, मसाइलिस्तान है पाकिस्तान नहीं है मसाइलिस्तान है। लेकिन फिर एक चीज़ फरमाई कि हाँ इतनी बात जरूर है कि अगर आप वहाँ रहेंगे तो आपको अपनी अगली जो जनरेशन है उनकी ईमान का भी पता होगा कि वो ईमान पे होंगे या नहीं, और अगर यहाँ रहेंगे तो कम अज़ कम आप अपने साथ पुश्तों के बारे में इत्मीनान रख सकते हैं कि वो ईमान के अंदर इतना माहौल का असर करते हैं कि यहाँ जितने चैलेंजेस हैं लेकिन कम अज़ कम एक ईमान आपको अजान सुनाई देती है, मस्जिद की अजान की आवाज़ सुनना, उसके बाद फिर मदारिस हैं मशाइख हैं यहाँ आपको एक फिजा के अंदर यू कैन फील यू कैन सेंस एक बरकत है, एक रूहानियत है, एक नूरानियत है, खानकाहें हैं, ऐसे लोग हैं, नेहमतुल्लाह मौजूद हैं, ऐसी यहाँ महफिलें होती हैं, यहाँ लोग जिनके खुल के बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कैद नहीं है। तो यहाँ माहौल में एक नूरानियत है, रूहानियत है, एक ईमान की फिजा है, फिजा का भी मैटर करता है कि वो इज द एनवायरमेंट। हाँ ऐसी बात नहीं कि यहाँ हर बंदा एक है, यहाँ भी पीपल आर एथियस्ट, यहाँ भी पीपल लोगों के पास एग्नोस्टिक, लेकिन एक फिजा का इम्पैक्ट और वहाँ की फिजा तो यहाँ ईमान की फिजा है जहाँ अपना ईमान बचाना भी बहुत आसान है और बल्कि अपना ईमान बढ़ाना और आगे लेके जाना बहुत आसान है। उसके बरक्स वहाँ पर जो माहौल है वहाँ चूँकि माहौल ईमान वाला नहीं है तो एवरी डे इज अ चैलेंज, अपना ईमान बचाने का चैलेंज, बाउंड्री पे जिस तरह का स्ट्रगल स्टैंडिंग है फ्रंटियर और इंसान का बस ईमान बचाओ का चैलेंज होता है, इस तरीके से हमारे ईमान बचा रहे, हमारे आमाल बचे रहे, हमारा अकीदा बचा रहे। और इसका मतलब ये नहीं है आप लोगों को रोकने के बाहर ना जाए, बिना समझे मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ईमान की अहमियत को समझे। जो लोग बाहर हैं पीपल बॉर्न एंड रेज्ड इन द यूएस उनको नहीं आ सकते, उनका एवरीथिंग इज देयर ओन कंट्री, दे हैव टू फाइंड विद इन देमसेल्व्स द एबिलिटी टू कोप विद दैट एनवायरनमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह कि एक हद तक इट मैटर्स वेयर यू आर बॉर्न एंड रेज्ड बिकॉज़ देन यू गेट सम इम्यूनिटी एज़ वेल। माहौल में जब वायरसेस होते हैं ना और आपको रोजाना वायरस लग रहा हो तो इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाती है। हम मजाक करते हैं कि जब बाहर से दोस्त आते हैं ना यहाँ पर पानी पीता तो तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि वो इम्यूनिटी नहीं होती है। हाँ वही पानी पी रहे होते हैं 15-20 साल हो गए किसी की तबीयत खराब नहीं है, उनको एक ग्लास में डायरिया हो जाता है, इम्यूनिटी वाली बात। तो बाहर जो वहाँ है उनको तो एक हद तक इम्यूनिटी हो जाती है। And then they also know the environment and they try to do the best they can do in that environment. And Allah Ta'ala har bande ko uske mutabik azmata hai, har bande mein imtihan hota hai. Kisi ko Allah Ta'ala ne agar wahan mohan mein paida farmaya, wahan rehte hain to unka imtihan ke etebar se hota hai. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah Ta'ala kisi ke upar aisa bojh nahi dalte jo woh utha na sake. मैं कुछ अर्से पहले ओहायो जाना हुआ था तो वहाँ एक मुफ्ती साहब थे पाकिस्तान के, तो वो एक मस्जिद मदरसे के अंदर इमामत कभी काम करते थे, इफ्तार का भी काम करते थे, बच्चों को पढ़ाते भी थे, अपने बीवी बच्चों के साथ समेत वहीं थे, पाकिस्तान से आए थे। जैसे जब मैं आया तो मुझे बहुत तरद्दुद था कि मैं आया हूँ सही आया हूँ गलत आया हूँ। उनका तालुक मुझे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से था, कहते मैंने उनसे तालुक इबादत करी कि मैं ऐसा ऐसा है मैं यहाँ रहूँ या वापस जाऊँ, तो पहला कर तो उन्होंने मुझे देखा कि वापस आ जाऊँ। तो फिर भी मैंने कहा शायद मैंने वापसी की समझाई नहीं, तो मैंने दोबारा खत लिखा और तफसीली खत लिखा। फिर उसके पीछे उन्होंने जो बल्कि मुफ्ती तकी साहब का वो भी दिखाया पर चल के आई थिंक क्या कर उनका फिर जवाब करके देखे और उन्होंने लिखा तो सारी बात थी, मैं यहाँ मुतमिन हूँ, मैं इत्मीनान से हूँ, मेरे बच्चों का ईमान भी मुझे पता है, मेरी नस्लों के सामने हैं, मेरे मदरसे में जाते हैं, मेरी बीवी भी आलिमा है, हमारा काम बस इतना है कि हम यहाँ घर में होते हैं, घर से वहाँ इंस्टीट्यूट मदरसे में जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर मदरसे, हमारी दुनिया ही यही है, इसके बाहर हम कहीं जाते नहीं है, ना हम किसी को जानते हैं ना कोई हमें जानता है, बस दिस इज आवर लाइफ के मस्जिद एंड घर, मस्जिद एंड घर, मस्जिद एंड घर। तो इस सूरत हाल के अंदर हमारा क्या फतवा है? दूसरा फतवा था कि भाई अगर आपको अपने ईमान का इत्मीनान है और अपने बच्चों के ईमान का इत्मीनान है तो जब तक है आप गुजारा करें, क्योंकि वो दीनी खिदमत कर रहे थे, वो उसकी चिंता और लोगों को फायदा पहुँचा के सब तक पहुँचा सकता है। लेकिन जिस मौके पे आपको अपने ईमान के इत्मीनान ना रहे या अपने बच्चों के ईमान का इत्मीनान ना रहे तो आपके ईमान रहना जायज नहीं है वापस। फिर उन्होंने उसी खत में जो लंबा चौड़ा भेजा था उसमें एक खत पर ये भी लिखा था कि मुझे अभी तो इत्मीनान है बच्चों का, क्योंकि मुझे डर लगता है इस बात से कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इस डिसीजन की वजह से मेरे बच्चों के बच्चे फिर उनके बच्चे इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाके ये ना हो कि मेरी नस्लों के अंदर ईमान छिन जाए। तो अगर ईमान छिन जाता है तो उसका बवाल भी क्या मेरे ऊपर आएगा कि क्योंकि मैं किया था वहाँ, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो देयर, तो लिहाजा क्या अगर कोई मेरे खानदान में या मेरे जनरेशन टू कम में कोई उस माहौल की वजह से ईमान से हाथ धो बैठता है तो उसका बवाल मेरे ऊपर आएगा क्या? उसकी मेरा सवाल अपने मतलब का सवाल पूछा, मेरा सवाल पूछा, वरना तो कोई आम मतलब की तो सोचना जाती नहीं। तो उसका फिर जवाब उन्होंने उसी खत में लिखा था गंदी साहब ने कि देखिए अगर आपको अभी अपने ईमान के इत्मीनान है और अभी अपने बच्चों और फैमिली के ईमान के इत्मीनान है तो जब तक इत्मीनान है आप दीन की खिदमत करते रहें, लेकिन अगर आपका इंतकाल हो अपने अभी से वसीयत लिख दें बच्चों को, बच्चों को वसीयत लिखें कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें वसीयत करता हूँ कि जिस मौके पे तुम्हें अपने ईमान का इत्मीनान ना रहे उस मुल्क छोड़ को वापस आ जाना, अपने बच्चों को वसीयत कर देना। कहता अगर आप वसीयत कर देंगे तो एक हद तक आपका अपना जो फर्ज है वो आपने अदा कर दिया, ईमान बचाने का जो फर्ज है वो आपने एक हद तक अदा कर दिया। ये बताने का मकसद आपको इसलिए है कि ये वेरी मेजर एस्पेक्ट, बहुत अहम सवाल है कि अपने ईमान को इस दौर के अंदर बचाना है और ऐसे डिसीजन लेने हैं विच विल हेल्प आवर ईमान। ये सोचे कि हदीस मुबारका में आते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक सहाबी को फरमाया कि अगर लोग तुम्हें टॉर्चर भी करते हैं, अगर लोग तुम्हें फांसी भी दे देते हैं, कत्ल भी कर देते हैं तो बर्दाश्त है, लेकिन ईमान से नहीं है, ईमान पे जमे रहो, हर चीज कुर्बान कर सकते हैं लेकिन ईमान से हाथ धो नहीं सकते। कितने ऐसे वाकया है हमारी तारीख के अंदर, एक बादशाह था उसने एक ताबीज तो जब एक कादी के सामने मुसलमान भाई को देखा वहां इस तरीके से उसको जुल्म किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है और फिर करते करते वो बेचारा अपने आखिरी सांस लेके दुनिया से रुखसत हो गया। तो एक कादी रहमतुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए तो बादशाह बड़ा खुश हुआ कि दिल में खौफ है। तो कहते कि देखो अभी भी मौका है, आप अपने कलमे को छोड़ दो, मेरे दीन पे आ जाओ तो मैं आपको सजा से बरी कर दूंगा। तो इसने सुना ना तो दादी ने आगे से जवाब दिया कि एक बदबख्त दूर हो जाओ बादशाह होगा कि आप मुझे ये समझ रहे हो कि मैं डर की वजह से आंखों में आंसू आ गए, वहां दरअसल ये है कि मैं तो इस बात को सोच रहा हूँ कि यह अल्लाह आपने मुझे एक जान दी है, अभी वो एक जान आपके राह में कुर्बान हो जाएगी, काश कि अल्लाह मेरे जिस्म पे जितने बाल हैं मेरी इतनी जाने होती और मैं एक एक करके ये सारी जाने आपकी खातिर कुर्बान कर सकती। सहाबा इकराम तबीईन इस्तकामत थी, ईमान के ऊपर डटे रहते थे, परफेक्ट नहीं लेने के लिए आते। तो हमें ईमान पे जम कर एक बात और याद रखें, अपने ईमान के बारे में कोई शक और शुबा नहीं है। ये दूसरी हमारा परेशानी है कि हर तरफ से शकूक शकूक और शुबा पैदा किए जा रहे होते हैं और अच्छा बना इंसान पीपल इसका शुक्र है जिंदगी के। वो कहता है कि अच्छा चले मैं फर्ज कर लेता हूँ ऐसा है फिर मैं इसका जवाब ये दे देता हूँ, हम दलाइल पे आ जाते हैं कि चले मेरी दलील ये है अब मैं फर्ज कर लेता हूँ ऐसा, ईमान के मामले के अंदर तो इंसान ठोस खड़ा हो। मैं इस तरह इमाम राकी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि मैं बिना किसी दलील के ईमान आता हूं, जो करना है करना। एक दफा इमाम राकी रहमतुल्लाह ने उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने एक रिसाला था, जिसमें उन्होंने अल्लाह तआला की वहदानियत, अल्लाह तआला के वजूद के ऊपर 100 दलाइल जमा किए थे। तो उनको उस किताब को बड़ा नाज था, बहुत फख्र था कि ऐसे दलाइल, ऐसे प्रूफ्स हैं कि कोई तोड़ नहीं सकता। तो एक दफा शैतान उनके पास आया और कहने लगा कि राजी, आपका जो ईमान है ना, बड़ा कच्चा ईमान है, पक्का ईमान नहीं। इमाम राजी रहमतुल्लाह ने कहा कि क्या मतलब, मेरा तो बड़ा पक्का ईमान है, मेरे पास एक दलील नहीं 100 दलील है, मेरा तो ईमान दलाइल के ऊपर खड़ा है और पक्की दलील है। शैतान का जिक्र, नहीं आपका ईमान कच्चा है। उन्होंने कहा मुझे बात समझाओ कैसे कच्चा है। कहते देखिए मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो शैतान एक इंसान के रूप में किया और सामने कोई देहाती बंदा था, विलेज बेडवन, और उस देहाती बंदे को जाके कहने लगा कि खुदा नहीं है, खुदा नहीं है। तो देहाती बंदा था, उसका पैर से जूते निकाले, तुम्हारी ऐसी भी जैसी मारने लग गए। तो शैतान आपको कहता है कि देखा कि ये वो बंदा है देहाती, इसका पक्का ईमान है। इसके सामने मैंने हल्की सी बात करी कि खुदा नहीं है और उसने मेरी बात सुनना ही गवारा नहीं करी, वो तो जूते से मुझे मारना शुरू हो गया। और एक आप है कि मैं आपके सामने यही बात करता हूँ, तो आप कहते कि देखो मैं भी दलील देता हूँ, आप मुझे दलाइल देते रहते, मैं आपकी दलाइल तोड़ता रहूंगा। आपके ईमान कच्चा है, किस बंदे का ईमान पक्का है? फिर मोटी सी बात याद रखें कि ईमान के मामले में जब एक बंदा ने ईमान लेके आ गया, हमने अल्लाह ताला को अपना रब तस्लीम किया, अल्लाह ताला हमारे रब हैं, हमारे खालिक हैं, हमारे मालिक हैं, हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, जब एक सौदा कर लिया ईमान का, अब इसके बारे में इंसान इतना डट जाए, इतना जम जाए कि कोई इसके खिलाफ बात सुनना भी गवारा ना। ईमान के मामले में सब सुनना भी गवारा ना, ऐसा पक्का ईमान होना चाहिए। इमाम वहीं पर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अना मुमिनुन हक्का। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ये नहीं कहना चाहिए बल्कि बोलो अना मुमिन इंशाअल्लाह। ये बड़ी फिकी बहस है। उनका नजरिया ये था इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कि अन्ना मोमिन, मैं मोमिन हूँ इंशाअल्लाह, यानी मुझे पता नहीं कि मुझे जब मौत आएगी तो किस हाल में आएगी। तो वो अपने मौत के नजरिए से और पर्सपेक्टिव ऑफ डाइंग, उनका ये जुमला था, कहते थे ये बोला करो अन्ना मोमिन इंशाअल्लाह, कि अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो मुझे ईमान पे मौत आएगी। और बात उनकी अपनी जगह ठीक है कि हमें नहीं पता कि किस हाल में ईमान, किस हाल में मौत आएगी। लेकिन इसके बरक्स जो इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह अलैह थे, वो कहते थे कि नहीं, ये नहीं बोलो, ये कमजोरी की अलामत है कि अना मोमिन इंशाअल्लाह, तो बोलो अना मोमिन हक्का, कि मैं मोमिन हूँ और पक्का हूँ, मैं मोमिन हूँ और पक्का हूँ, सच्चा। शक को, शुबहा को इंसान मौका ही ना दे। और उनकी बात अपनी जगह ज्यादा बसती थी कि अभी के एतबार से मैं मोमिन हूँ, पक्का हूँ, सच्चा हूँ, तो बोलो मौका क्यों दे रहे हो? शैतान को जो रास्ता बनाए, किसी शुभा को के रास्ता बनाए और ईमान से हटाने की कोशिश करे। अना मोमिन हूँ, अना मोमिन हूँ पक्का। राम राजी रहमतुल्लाह अलैह का जब आखिरी वक्त था तो शैतान आता है और कहता है कि राजी, आपकी ईमान कि आपको बहुत नाज है, क्या दलील है आपकी? इमाम गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आते हैं कि उन्होंने पूरी जो किताब लिखी थी उसमें से एक दलील जाके पेश करी कि देखो ये दलील है, इसकी बुनियाद में ईमान लाता। शैतान उस दलील को तोड़ दिया। फिर उन्होंने दूसरी दलील पेश की, शैतान ने दूसरी दलील भी तोड़ दी। करते 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 जो 100 दलायल थे ना, 100 के 100 पेश किए, 100 के 100 शैतान ने तोड़ दिए। अब आखिरी वक्त है, इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह हैरान हैं, परेशान हैं, और शैतान ने ताना देना शुरू कर दिया कि राज़ी आपका अगर तौहीद के अकीदे के बारे में ये हाल है कि इसको आप दलायल से प्रूव नहीं कर सके, तो फिर बाकी अकीदों के बारे में आपका क्या हाल होगा? शैतान ने भी खूब ताने देना शुरू कर दिया। लेकिन इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेख के साथ ताल्लुक था, उनके अपने शेख थे हज़रत ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह, और वो उनके जिक्र सीखा करते थे, उनके साथ ताल्लुक था, अकीदत की मोहब्बत थी। तो उस मौके पे जो शेख थे वो काफी भी दूर अपने शहर में थे, लेकिन अल्लाह ताला ने कश के जरिए उनको सूरत हाल से आगाह कर दिया कि ये राज़ी का आखिरी मौका है, उनके आखिरी लम्हात हैं, और शैतान ने उनको इस तरीके से बिल्कुल लाजवाब कर दिया। तो नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त वज़ू फरमा रहे थे, मस्जिद के अंदर नमाज की तैयारी कर रहे थे, तो कहते मैं अपने हाथों को वज़ू कर रहे थे, फिर उन्होंने पानी का अपने हाथ में लिया और जोर से दीवार पर फेंका, और ये जुमले अल्फाज कहे कि राज़ी अब शैतान से ये क्यों नहीं कह रहे थे कि उससे दूर हो जाओ, उससे दूर हो जाओ, मैं अल्लाह ताला की ईमान लाता हूँ बगैर किसी दलील के। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत काबिला से ये जो अल्फाज थे ये अल्फाज वहाँ तक पहुँचा दिए थे। और राज़ी रहमतुल्लाह अलैह इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ये अल्फाज सुने तो उन्होंने यही जुमला शैतान को कहा, शैतान हर वक्त दूर हो जाओ, मैं अल्लाह ताला की ईमान लाता हूँ बिना बगैर किसी दलील के। फिर कलमा पढ़ा और उसके बाद दिन का नमाज पढ़ा। तो शैतान का हमला आखिरी वक्त तक रहता है और ईमान के ऊपर हमला करता चला जाता है, क्योंकि ईमान पर बावजूद अगर अल्लाह वालों के साथ सोहबत हो, ताल्लुक हो, अकीदत हो, तो इसके एक बड़े फ़ायदे हैं, उनमें से एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ईमान को एक कहाफ मिल जाता है, एक केक मिल जाता है, जिसमें ईमान इंसान का प्रोटेक्टिव हो जाता है। और अल्लाह का स्थानीय रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि ये जो शेख के साथ ताल्लुक है, जो बेस का अमल होता है शेख के साथ ताल्लुक, फरमाते थे कि ये फमन दाखिल हो काना आमिन, कि जो इसमें दाखिल हो गया उसने अमन हासिल कर लिया, अब वो ईमान के ऊपर उसको मौत आई। तो हमें इस ईमान की कदर भी करनी है और इस ईमान की हिफाजत भी करनी है। अहमियत को पहचान उसमें मसला किया है, हमने इस ईमान के लिए व्यापार न थे, कोई कुर्बानी नहीं थी, और इस वजह से हमें इसकी अहमियत नहीं। जब तक इंसान कोई चीज कुर्बान ना करे ना, उस वक्त तक जो केवल अतिशय गदारी होता है। आप लोग अपने कुछ लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कितने पैसे खर्च किए, पैसे खर्च करते हैं तो उसकी भी अहमियत दिल के अंदर उतरती है कि भाई इतने पैसे खर्च किए हमने इस एजुकेशन के। कोई चीज़ खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो यू स्पेंड मनी, देन यू रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट दैट थिंग इज। ईमान को खरीदने में हमने क्या खर्च किया? हमने कोई चीज़ खर्च नहीं करी, ना माल खर्च किया, ना वक्त खर्च किया, ना टाइम खर्च किया। हम पैदा हुए तो एक कान में किसी हमारे वालदे ने अजान दे दी दूसरे में एकामत हो गई और हम उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुए तो हमारे वालदैन ने वालिद ने हमारी उंगली पकड़ के हमें मस्जिद ले गए। फिर कारी साहब आके हमें कुरान पढ़ाया, नाजरा हुआ, कुरान मुकम्मल किया, कुरान हिफ्ज किया। अब तो ईमान के ऊपर कोई चीज़ खर्च ही नहीं करी, मुफ्त की नेमत है, मुफ्त है। और इंसान तो फितरी तौर पर एक फितरत है कि जो चीज़ मुफ्त मिलती है उसकी कदर नहीं होती, उसकी कीमत नहीं होती, उसके पीछे पता नहीं कुछ लगा ही नहीं है ईमान के ऊपर, तो उसकी वैल्यू कैसे पैदा होगी। अगर हमें ईमान की सही प्राणी चाहिए, we want to really truly appreciate the value, the worth, the price of ईमान, हम नहीं कर सकते भी आप लोग होगा 1400 years ago, 1400 साल पहले जाए, आपको सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला वो बता सकते हैं कि ईमान की क्या कीमत है, वो बताएं। क्योंकि सीने पे पत्थर रखे जाते हैं और फिर भी जबान पे आहत 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 की आवाज है। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो बता सकती हैं कि ईमान की क्या कीमत है। उनको टॉर्चर किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, जुल्म पे जुल्म किया जा रहा है, लेकिन वो ईमान की पर जमी हुई है, डटी हुई है। इतना जुल्म किया जाता था ये गुलाम थे। और मक्का मुकरमा के अंदर जो मक्की जमाना था वहाँ तो मुसलमान थोड़े तो होते थे, और थोड़ों में अगर कोई गुलाम हो तो उसमें तो टूट के तशद्दुद किया जाता, टूट के जुल्म किया जाता था कि ये तो गुलाम है। तो हजरत यासिर रजी अल्लाह ताला अन, हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन और हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला, ये पूरा घराना था, मियां बीवी और बेटा और गुलाम घराना था, और इनके ऊपर जो जुल्म होता था नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि मैं गुजर रहा होता था, अपनी नजरों अपनी आंखों के सामने देख रहा होता था कि किस तरीके से जो कुरैश मक्का है उनके ऊपर जुल्म कर रहे होते थे, तशद्दुद कर रहे होते थे, और उस वक्त क्योंकि इस्लाम कमजोर था उनको बचा भी नहीं सकते थे, बस मैं ये कहा करता था कि सबरन या आला यासर, सबरन या आला यासर, इन मौइदकुम जन्नत, कि आले यासर सबर करो, बेशक अल्लाह ताला ने इस सबर के बदले तुमसे जन्नत का वादा करा। एक शख्स था, किताबों में लिखा है कि एक कीमती चादर थी, मिसाल के तौर पर 500 रुपए की, वो उस चादर को लेके अपना एक पुराना जूता था 5-10 रुपए का, उसको साफ कर रहा था। तो देखने वाले ने देखा तो कहा कि भाई अजीब सी चीज है, कितनी 500 रुपए की चादर शॉल, उससे 5 रुपए की चप्पल आप साफ कर रहे हैं, जूता साफ कर रहे हैं, क्यों? उसने जवाब दिया कि हाँ बात तो ऐसी है, लेकिन ये जो जूता था ना ये मैंने खुद खरीदा है, और जो शॉल है ना वो मेरे अबू ने मुझे दिया। तब शॉल अबू ने दिए तो अब 500 रुपए के शॉल से इंसान फिर अपने 5 रुपए का जूता साफ कर रहा है। तो ये हकीकत है कि जब तक हम इस ईमान के ऊपर वक्त नहीं लगाएंगे, ईमान के लिए कुछ कुर्बान नहीं करेंगे, इसकी कदर पैदा नहीं होगी। कुर्बानी से ना सिर्फ कबूलियत मिलती है बल्कि कुर्बानी से इंसान को ईमान की कदर पता चलती है। कुर्बानी देनी पड़ती है, वक्त की कुर्बानी, वक्त लगाना पड़ता है ईमान को बनाने के। हमारे जो अकाबरीन हैं, अभी जो जो दीन पे आगे बढ़ना चाहते हैं, वो क्यों है कि वो अल्लाह वालों के पास जाया करते हैं, अपने घरों को छोड़ के अल्लाह वालों की महफिलों में जाना? हर बंदा चाहता है कि घर में रहे, आराम से रहे, सुकून में रहे, अपने घरों के आराम को छोड़कर ऐसी जगहों पे जाना क्यों? क्योंकि उनको अपने ईमान की फिक्र होती है कि यहाँ आके हमारा ईमान बनेगा, हमारा ईमान बढ़ेगा। ये अस्पताल है, ये हॉस्पिटल,
हमें इस तरह की वी नीड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, हमारी ऐसी क्रिटिकली इल आईसीयू वाली हालत हो चुकी है। ईमान के अतबार से अगर ईमान इज इंटेंसिव रिक्वायर्स एन इंटेंसिव केयर यूनिट, वी नीड टू हॉस्पिटलाइज आवरसेल्फ। हम क्या, हम तो हम सिर्फ दुनिया की बीमारियों को बीमारी समझते हैं और हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया उसको बीमारी नहीं समझते। इस वजह से लोग जाते हैं, फिर अल्लाह वालों के पास जाते हैं, दिन गुजारते हैं, रातें गुजारते हैं, वक्त गुजारते हैं, फिर वहां उनको एंटीबायोटिक लगती है, टीके लगते हैं, कभी जिक्र का टीका लग रहा होता है, कभी खिदमत का टीका लग रहा होता है, उनको ये टीके लग रहे होते हैं, फिर वक्त गुजार रहे होते हैं, उससे फिर उनके अंदर जो बीमारी है दूर होना शुरू होती है, एक हद तक दूर होती है, और फिर ये सोचता आते जाते रहना चाहिए, आते जाते रहना चाहिए। इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। ये वजह है आज हम घबराते हैं कि हम किसी के पास जाना नहीं चाहते, हमें हर चीज घर में मिल जाए। टेक का दौर है, टेक्नोलॉजी, तो आई डोंट वांट टू लीव एनीथिंग, एवरीथिंग शुड बी ऑनलाइन। सोहबत कैन नॉट बी ऑनलाइन। जिस तरह से बीमार होते हैं तो यू विल गो टू द हॉस्पिटल, व्हेन अ पर्सन इज स्पिरिचुअली सिक, स्पिरिचुअली इल, यू नीड टू गो, यू नीड टू स्टेप आउट। इमरजेंसी सिचुएशन है, यू नीड टू गो आउट। हम हर काम छोड़ देते हैं, हल्का सा फ्लू होता है, हल्का सा बुखार होता है, वो सारी मसरूफियत की मेरा ये ड्यूटी मीटिंग है, ये मेरे बच्चों को लेके जाना है, मेरा फला कमिटमेंट है, फला कमिटमेंट है, सारे कमिटमेंट्स पॉज हो जाते हैं। हम हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, सारे प्लान कैंसिल हो जाते हैं। भाई सबसे हेल्थ कम्स फर्स्ट। तो अगर हमारे दिल के अंदर शहावत है और तकब्बुर है, हसद है, ये भी तो बीमारियां हैं, और ये तो ज्यादा मोहलिक बीमारी है। हदीस मुबारक में आते हैं कि नबी अकरम ने फरमाया, किसी के दिल में एक राई बराबर भी तकब्बुर हो तो ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, राई बराबर भी। और हमारे दिल की क्या हालत है, हमारे अंदर तो लगता है कि सारी अगर रूहानी बीमारियां गिने तो अगर सारी की सारी मौजूद हो, कोई एक दो नहीं, सारी की सारी मौजूद होंगी। तो लिहाजा फिक्र होनी चाहिए। अब इस ईमान को सलामत रखने की दो अलामतें भी हमारे पास शायद ने बताई कि कैसे पता चले कि ईमान पक्का है। दो अलामतें हैं। एक अलामत तो ये होती है कि अगर इंसान गुनाह कर दे और गुनाह के ऊपर उसको रोना है, उसको शर्मिंदगी हो, तो ये ईमान की अलामत है कि उसके दिल में ईमान है, ईमान की कदर है, तभी उसको रोना आता है। और अगर कोई इंसान ऐसा है कि उसने इल्म तो पढ़ लिया, किताबें तो पढ़ रहे हैं, इल्म भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर कोई डर नहीं है, कोई खशियत नहीं है, गुनाह करता है लेकिन कुछ फील नहीं होता, नो रिमोर्स, नो रिग्रेट, देन ये घबराने की बात है, क्योंकि अभी ना उसको हकीकी इल्म हासिल है, उसका ईमान खतरे में, इल्म भी हासिल नहीं है, इल्म का नूर नहीं मिला, मालूमात बहुत मिल गई लेकिन इल्म का नूर अभी नहीं मिला, उसके दिल पे ताला लगा हुआ। इल्म आता है, दिल पे लगता है और बाहर चला जाता है, अंदर नहीं दाखिल हो पाता क्योंकि दिलों पे ताले लगे। कुरान का अल्लाह ताला इल्म की पहचान बताता है, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहि उलमा, कि उलमा की पहचान, इल्म वालों की पहचान, इल्म पढ़ने वालों की क्या निशानी है कि ये अल्लाह के ताला के वो बंदे हैं कि जिनमें अल्लाह ताला की खशियत है, खौफ है। फरमाते थे कि इल्म की निशानी ये है कि दिल में खौफ पैदा होता है और फिर इंसान गुनाहों से इस तरीके से बचता है जिस तरह इंसान सांप और बिच्छुओं से बच रहा होता है कि अगर ये एक्सीडेंटली हाथ भी लगा लिया तो मुझे मौत आ जाएगी, ऐसी कैफियत होती है। कि सांप और बिच्छू ऐसे जहरीले जानवरों से ज्यादा इंसान गुनाहों से बच रहा हो, कि ज्यादा जहरीले हैं, कि मैंने अगर नजर गलत किसी में शहावत की नजर डाल दी तो ये एक जहर है जो उसी वक्त रूहानी तौर पर मैं बच जाऊं। जहर की बात नहीं है, और दूसरी निशानी अलामत के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत और चाहत ये होनी चाहिए, ये ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो लोग ईमान वाले हैं उनके दिल में अल्लाह ताला की शदीद तरीन मोहब्बत है। अल्लाह ताला की मोहब्बत सारी मोहब्बतों पे गालिब होनी चाहिए, ये ईमान की दलील है, ये ईमान की अलामत है कि दिल में जितनी मोहब्बतें हैं सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला की। अच्छा, जब हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की मोहब्बत, तो और गैर की मोहब्बत को दिल से निकालो, तो उससे मुराद ये होता है कि जो मोहब्बतें शरीयत के दायरे के अंदर हैं, माँ बाप की मोहब्बत, बहन भाई की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत, ये सारी मोहब्बतें जायज़ मोहब्बतें हैं। ये मोहब्बतें अल्लाह ताला की मोहब्बत की तफसीलात हैं, अल्लाह ताला की मोहब्बत ही का हिस्सा है। लेकिन जब शरीयत के दायरे के बाहर नफ्स और लज्जत और शहवत के तौर पे जो इंसान ताल्लुकात बनाता है और मोहब्बतें करता है, वो गैर की मोहब्बत होती है। तो लिहाजा उन मोहब्बतों को दिल से निकालना और अल्लाह ताला की मोहब्बत को दिल में जमाना, ये ईमान की निशानी है। और आज इस पे बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। हम जो पत्थर के और लकड़ी के जो बुत होता है उनको तो कोई पूजा नहीं करता, लेकिन बुत सिर्फ बाहर पत्थर के नहीं होते, बुत कभी कभार इंसान के दिल के अंदर भी होते हैं, तखय्युल ख्यालात के बुत होते हैं, जज्बात के बुत होते हैं, ख्वाहिशात के बुत होते हैं। मैं भी कुछ देर पहले रजत जी की किताब पढ़ रहा था, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जिसने किसी औरत गैर औरत के ऊपर शहावत की नजर डाली उसने तो जिना कर लिया, उसने जिना कर लिया। और बस इतनी बात है कि उसको मौका नहीं मिला, उसको मौका नहीं मिलता करने का एक्चुअल, लेकिन जहन में उसने जिना कर लिया। अगर कोई गैर औरत के ऊपर शहावत की नजर डालता है तो ये सोचे अपने बारे में कि उसने जिना तो कर ही नहीं। अभी से बाहर का काम है कि नजर कर जिना की इंसान वगैरह औरत के शहावत की नजर डाल। अपनी नजरों का एहतियात कर, इब्तिदा नजर से होती। तभी कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि नजरों को झुकाना ये नहीं है कि इट्स अ कुरानिक फिलॉसफी, कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारी, मर्दों को अलग हुक्म, और कुल लिल मोमिनात यगुद्दू मिन अबसारीहिन, कि जो मोमिनीन मर्द है उनको कहते हैं कि अपनी नजरों को झुकाए, जो मोमिनात औरतें हैं उनको भी कहें कि अपनी नजरों को झुकाए। ज़ाली का अज़का अल्लाह, कि उनकी ही ज्यादा तज़किया की कही, नजरों को झुकाना, नजरों की हिफाजत करना। देखें, लोग कहते हैं ना कि हमें कुरान से दलील दो, हमें हदीस सही हदीस दलील दो, तो ये कुरान की आयत ही तो है। कितने खुले खुले अल्फाजों में अल्लाह ताला फरमा रहे कि अपने नजरों की हिफाजत करना हम पर लाजिम है। Because کہ لبن الناظر والمنظور الیہ، کہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد کیا؟ کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے. That person is picked up and placed outside the rahmat of Allah Ta'ala. کون محروم؟ الناظر، جو نظر، جو شہوت کی نظر کسی پہ ڈال رہا ہوں. والمنظور الیہ، اور وہ عورت جو اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہی ہو کہ مجھ پہ اس طرح شہوت کی نظر ڈالی جائے. دونوں کا اللہ تعالیٰ کی لعنت، دونوں کا ڈپرائیو آف دا رحمت آف اللہ تعالیٰ. اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان ہٹا دیا جائے تو پھر شیطان کا لقمہ بن جاتا ہے، شیطان کا لقمہ بن جاتا ہے. پھر انسان اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا سکتا. گناہ سے بچنا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بچ رہے تھے. تو دیروا پا رہے کیسے شروع ہوتا ہے؟ وما عمر ریوں بے نفسی الا نفسا لامار تم بے سو اللہ ماں رحیم ربی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی. اللہ جو نفس ہمارا ہے، میرا حال تو یہ ہے کہ نفس ہمارا ہے، اور نفس ہمارا تو گناہوں کی طرف مجھے کمانڈ کرے گا، لیکن اگر میں گناہوں سے بچتا ہوں اللہ ماں رحیم ربی، کہ بس بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ماں رحیم ربی، کہ میرا رب مجھ پہ رحمت کر دے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو میں بچ سکوں گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ اکبر. وہ اس طرح کا جملہ قرآن میں جملہ موجود کہ نفس ہمارا ہے مجھے گناہوں کی طرف لے کے جائے گا، حکم کرے گا. اگر کوئی بچتا ہے تو بچتا اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. اب دونوں چیزوں کو جوڑیں کہ جو اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ لبین اللہ، لبین الناظر والمنظور الیہ، لعنت پڑتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم. اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکل گیا تو پھر کیا بچے گئے؟ تو نفس ہمارا ہے. تو نفس ہمارا سے بچنے کے لیے الا ما رحم ربی، ایک ہی ایکسیپشن تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے انسان اس نفس ہمارا سے بچ سکتا ہے، اس نفس ہمارا کا تزکیہ کر سکتا ہے، اس نفس ہمارا کو نفس مطمئنہ بنا سکتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے. اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے محروم ہو جائے تو پھر تو نفس ہمارا، پھر تو شیطان کے ہاتھ میں کھلو ہے. اور آج یہی ہو کہ چونکہ یہ بڑا گناہ ہے، ہمارے بزرگ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ چند گناہ ایسے ہیں جو بڑے گناہ ہوتے ہیں، اگر ان بڑے گناہوں سے انسان اپنا آپ کو بچا لے، کیونکہ مجاہدہ بڑا ہوتا ہے، قربانی بڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے چھوٹے گناہوں سے خود کو خود بچا لیتا ہے. ان بڑے گناہوں میں سے یہ بڑا گناہ ہے کہ انسان نظر کو حفاظت نہ کرے، نظر کا گناہ ہے. یہاں مجاہدہ زیادہ ہے، یہاں ماحول دیکھیں تو کتنا مشکل لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، اتنا امپوسیبل ہے، یہ تو ایسا نہیں ہے، اس کی کوئی اور ٹرانسلیشن ہوگی، اس کی کوئی اور تفسیر ہوگی، یہ تو امپوسیبل ہے، ہمیں کچھ اور بتائیں. When people think this is unbelievable, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، how can I lower my gaze, یہ تو کچھ اور بتائیں. We have to reinterpret this somehow. قرآن کے الفاظ ہیں، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں. ہاں مجاہدہ زیادہ ہے، لیکن یہی تو وجہ ہے کہ اگر بڑا مجاہدہ انسان کر لے تو پھر چھوٹے مجاہدہ آسان ہو جائے. اس گناہ سے اپنا آپ کو بچا لے، باقی چیزوں سے اللہ تعالیٰ خود بچا، کیونکہ اس گناہ سے بچانا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی انسان کسی کو موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنی نظر بد نظری کر سکتا ہے، وہ چاہے تو اپنی نظر کا غلط استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس موقع کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، अल्लाह ताला के देहान की वजह से वो अपनी नजरें झुका लेते हैं, गुनाह नहीं करते। तो अल्लाह ताला इस बार के बात है कि अल्लाह ताला उस वक्त उसके दिल में एक ऐसी ईमान की मिठास पैदा फरमाएंगे, वजद अलावत ईमान, that person will be able to feel the sweetness of ईमान in his heart। और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस तशरीह में फरमाते हैं कि ये एक ऐसी मिठास होगी जो उसको अपने खात्मा वही जबान टू लीव दिस वर्ल्ड अल्लाह ताला उसको वही मिठास अता फरमाएंगे और उसी मिठास के ऊपर उसका इंतकाल होगा, यानी खात्मा बिल ईमान होगा। इन अदर वर्ड्स, कितनी बड़ी नेमत है कि इंसान अपनी नजरों की हिफाजत करे, अल्लाह ताला उसको ईमान का हलवा अता फरमाएंगे, ईमान की हलावत अता फरमाएंगे, ईमान की मिठास अता फरमाएंगे और खात्मा ईमान के ऊपर होगा। तो अपने दिल से मेहर की मोहब्बतों को निकालना चाहिए, अपनी निगाहों की हिफाजत करें और अपनी सोच की हिफाजत करें। दूसरा जो तरीका है ना, जहां से शैतान वसवसे डालता है, वो सोच है। और सोच के गुनाह, यानी पहली दफा आपने सुना ना जो आपने बड़ों से, तो बहुत बहुत देर तक हम इस जुमले के बारे में सोचते हैं। बल्कि अभी भी हम जब जाते हैं ध्यान में, वहां मस्जिद के अंदर एक दीवार के ऊपर ये बड़ा बड़ा महफूज है जुमला लिखा हुआ है कि हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो सोच का गुनाह है उसकी जो जुल्मत है वो एक्चुअल गुनाह से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल अगर कोई इंसान हकीकत में गुनाह करता है तो हमने गुनाह किया, एक दफा किया, जुल्मत आई लेकिन वो मिट गई या दिल में रह गई, आइदर वे वो क्वांटिफाइबल एक दफा की बात है। लेकिन जब सोच में गुनाह करता है तो वो एक दफा का गुनाह नहीं होता, वो कंटिन्यूस गुनाह हो रहा होता है। आप गुनाह के बारे में सोच रहे हैं और कंटिन्यूस दिल में जुल्मत आ रही होती, दिल में अंधेरा आ रहा होता है। सोच के गुनाह से अपने आप को बचा। तसव्वुफ के अंदर हमारे मशाइख पहला कदम कहते हैं, पहला कदम ये है कि अपने सोच को पाक। जब सोच पाक होगी तो फिर दिल पाक होगा। सोच पाक करना और निगाहें पाक करना, ये पहला कदम है। मैं शायद पहले भी जिक्र किया था कि काफी अच्छे सालों पहले बात है, हम उस वक्त सुलूक के इब्तदाई असबाब थे, अजीज से पहली पहली मुलाकात हुई तो उस अजीज ने नसीहत फरमाई, तो नसीहत यही थी कि अपने सोच को पाक करो। कोई पांच छह लोग थे लम्स के, सोच को पाक करो, सोच पाक होगी तो फिर दिल पाक होगा, फिर दिल का तस्किया होगा। तब तक सोच ही पाक नहीं है, सोच में इंसान गुनाह शहवत शैतानी ख्यालात नफसानी ख्यालात आ रहे हैं, तुम्हें तज़किया दिल का कैसे होगा? हो ही नहीं सकता, नामुमकिन बात। पहला कदम यह है कि सोचो, और सोच को पाक करने के लिए जो तरीका हमारे मशाई कहते हैं वो है वकूफ कलबी, के हाथ काम काज में मसरूफ हो और दिल अल्लाह ताला की याद में मसरूफ हो, अपना दिल अपना देहान बस अल्लाह ताला के साथ जुड़ा हुआ हो, सारे काम करें, ड्राइविंग कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं, सारे काम करें, लेकिन इस कैफियत के साथ कि दिल अल्लाह 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 के, ये मशक है। इससे इंसान की फिर सोच पाक होना शुरू हो जाती है, ध्यान पाक होना शुरू हो जाता है, ख्याल आएंगे, उल्टे सीधे ख्याल आएंगे, अगर आते हैं तो उनको इग्नोर कर दें, उनकी तरफ तवज्जो ना करें। मसला हमारा उस वक्त होता है कि जब ख्याल के बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं, पहला ख्याल है उसको झड़क दें और अपनी तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ रखें कि मेरा दिल बोल रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इस दिल की तरफ ध्यान रखें। इसमें जो इंसान मेहनत करता है तो बहुत तेजी से तरक्की करता है। कई दफ़ा इंसान अपने आप को गुनाहों से भी बचा रहा होता है, कुरान पर भी कर रहा होता है, कुरान की तलावत भी कर रहा होता है, लेकिन फिर भी तरक्की इतनी नहीं हो रही होती। और रुकावट क्या होती है? रुकावट ये होती है कि वकूफ़ फिक्र भी नहीं कर रहे। और जो शख्स वकूफ़ कल्ब भी कर एहतमाम करे तो फिर इस रास्ते पे बिजली के तरीके से आगे जाता है। और जो सफर सालों में तय होना होता है ना, वो लम्हों में तय हो जाता है। फर्क सिर्फ वकूफ़ कल्ब का होता है। फर्क कहाँ पे? वकूफ़ कल्ब के, क्योंकि वकूफ़ कल्ब 24 घंटे की इबादत है, तिलावत कुरान 15 मिनट की इबादत है, मुराकबा आधे घंटे की इबादत है, तस्बीहात 10 मिनट की इबादत है, वकूफ़ कल्ब 24 घंटे की इबादत है। इसमें कोई चीज ये दिल की नियत है, दिल का दिल की तरफ ध्यान होता है, सारे काम करें, हाथ काम काजू मसरूफ, दिल अल्लाह तआला की याद में मसरूफ। लोग कहते हैं कि मामूलात के वक्त नहीं मिलता, अब तो वक्त बहुत मिलता है, हम उस वक्त का फायदा नहीं उठाते। लेकिन अगर मामूलात का वक्त नहीं भी मिलता और आपके का चले आधे घंटे का वक्त नहीं मिल रहा, तो वकूफ़ कल्ब में क्या रुकावट है? वकूफ़ कल्ब तो उस जिक्र को कहते हैं जो काम के साथ करना होता है, कि सारे काम चलते रहे, साथ साथ दिल में अल्लाह तआला को याद रखते हैं, उसमें क्या रुकावट है? ये तो इम्तहान लिख रहे हो, उसमें भी इंसान जिक्र की कैफियत होती है। आप अपना यूनिवर्सिटी का इम्तहान लिख रहे हैं, इन योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हॉल एंड योर हार्ट कैन बी डूइंग वुज़ू विद दैट बी रिमेंबरिंग अल्लाह ताला आप जिक्र में, इसमें क्या रुकावट है? आप ब्रेन में चला रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहे हैं, कोई जॉब मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, आप मीटिंग अटेंड करें, दिल में अल्लाह ताला को याद करते हैं, दिल में अल्लाह ताला को याद करते हैं, क्या रुकावट है? कोई रुकावट नहीं। आप 1 मिलियन का कारोबार कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, आप वो डील करते रहे, दिल में अल्लाह ताला को याद रखते रहे, क्या रुकावट है? तो कोशिश करने में तो कोई रुकावट नहीं है, इसी से तरक्की होती है। जो फर्क आते हैं ना वो इस पे आता है कि वो जो 24 घंटे थे, जो 23 आवर्स थे, वो जो जिसमें आप दुनिया के अंदर थे, जब फारिग नहीं थे, जो बिजी टाइम था वो कैसे गुजारा, वो गफलत में गुजारा या वो जिक्र की हालत में गुजारा, उससे सारा फर्क आता है। तो ये अल्लाह ताला से मांगना चाहिए कि ये अल्लाह मुझे वकूफ़ कल्ब की नेमत अता फरमा दे, ऐसा दिल अता कर दे कि बस हर वक्त मेरा दिल, मेरा ध्यान अल्लाह की तरफ, काम का हाथ काम काज में मसरूफ़ हो, दिल ये अल्लाह को याद करे, हर दुआ में अल्लाह ताला से ये मांग। क्या वही कि अल्लाह ताला हमें दुआ की बरकत से अता कर दे। और ये याद रखें, याद रखें कि हम दुआ के अंदर भी बहुत कंजूसी करते हैं, हम दुआ किसी तरीके से नहीं मांगते, मेहनत तो नहीं करते, दुआ भी इसी तरीके से नहीं मांगते, दुआ का जोर खत्म हो चुका हमारे। और ये आम लोगों की बात नहीं बात कर रहा, जो अपने आप को कहते हैं कि हम दीन की समझ है, दीन वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं, बल्कि तुलबा जो उलमा है वहां भी देखने को आ रहा है कि जो दुआ मांगने का जो जौक है वो खत्म हो चुका। लोग दुआ मांगते हैं, नमाज खत्म होती है तो दुआ मांगी, वही रटी रटी दुआएं होती हैं, और फिर दुआ मांगने के बाद ये नहीं पता था क्या मांग रहा। तो दुआओं का इस्तेमाल करें, कसरत से दुआ मांगे, दुआओं का जौक पैदा करें। और इसकी वजह क्या है? वजह भी समझें कि कई दफा ऐसा होता है कि इंसान को अपनी मेहनत के ऊपर वो चीज नहीं मिलती जो उसको दुआओं की बरकत से मिल जाती है। कई दफा ऐसा होता है
कि वो सालों साल मेहनत कर रहा होता है, मेहनत के ऊपर उसको वो चीज नहीं मिलती जो उसने दुआ मांगी होती है, उसको दुआ के रास्ते से अल्लाह ताला वो चीज अदा करवा है। अल्लाह ताला वो आज ही देखना चाह रहे हैं, वो इनके सारी देखना चाह रहे हैं, वो मांग रहा है अल्लाह ताला को कसर। लिहाजा कसरत से दुआ का एहतमाम, सिर्फ मांगे नहीं कसरत से मांगे, एक जौक हो, एक जज्बा हो, मांगे। अल्लाह ताला दुआओं को रद्द नहीं करते, वो कबूलियत से दुआ के कुछ मौके होते हैं, इंसान की जिंदगी बन जाती है। अगर शेख अजीज मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं तालिब इल्म था, मेरा दौरे हदीस का साल शुरू होना था, आखिरी साल जो आखिरी साल शुरू होना था, तो मेरे वालिद बहुत बड़े आलिम दीन थे, कहते वो मेरे उस्ताद थे, तो पहले दर्स के लिए दरस बुखारी शरीफ जो पहला दर्स था मिश्कात शरीफ का दर्स था, इस बात में कहता मुझे अपने कमरे में ले के आए और कहा कि बेटे वजू करके आ, पहला दर्स मैं पढ़ाऊंगा। और फिर उन्होंने खुद भी वजू किया अच्छी तरीके से और मुसल्ले पे आए और दो रकत नमाज पढ़ी और फिर मुझे कहा कि किताब का खुतबा पढ़ो, तो किताब का प्रेफेस होता है वो पढ़ो। मैंने वो पढ़ा, उसके बाद फिर उन्होंने हाथ उठाए और अल्लाह ताला से मांगना शुरू किया। अगर शेख रफी रहमतुल्लाह फरमाते मुझे नहीं पता मेरे वालिद साहब ने क्या मांगा, लेकिन 15-20 मिनट मुसलसल मांगते चले गए। और कहते हैं अपने बारे में फरमाते हैं कि उस वक्त मैं तो सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह बहुत अरसे बाद ये हदीस मुबारक का सफर शुरू हुआ है, हदीस मुबारक पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है, या अल्लाह इस सफर को ख़त्म ना करिएगा, इस सफर को हदीस मुबारक के सफर को ख़त्म नहीं करिएगा। कहते बस मैं तो एक ही दुआ मांग रहा था, कहते हैं कि वो कबूलियत दुआ का मौका था, उसके बाद मेरा मिश्कात शरीफ जो हदीस की किताब है उसका साल शुरू हुआ। ये 1332 की बात है, 1332 हिजरी की, कहते हैं बात है, ये वाकिया है जब मैंने अपनी हदीस बाद में की पहली बड़ी किताब पढ़ना शुरू की। और कहते हैं अब जब मैं आपको वाक्य ये नरेट कर रहा हूँ 1390 है, तकरीबन 50 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का मुझ पर फजल ऐसा हुआ कि 1332 से लेके अब तक कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे हदीस की खिदमत करने की तौफीक ना दी हो। उस साल मिश्कात शरीफ पढ़ी, अगले साल बुखारी शरीफ पढ़ी, उसके बाद फिर हमारे मदरसे के अंदर अबू दाऊद शरीफ के जो टीचर थे उनकी पोजीशन वेकेंट थी, तो लोगों ने मुझे वहाँ बैठा दिया, तो मैंने फिर अबू दाऊद शरीफ का दर्स देना शुरू कर दिया। वहाँ से सिलसिला चलता रहा और अब तक चल रहा है। ये ऐसी नेमतें होती हैं, ऐसी कबूलियत होती है जो मेहनत के ऊपर नहीं मिलती। कुछ चीज़ें मेहनत से नहीं मिलती, कुछ चीज़ें इंसान को दुआ के ज़ौक, दुआ की कसरत से मांगने से मिलती हैं। हमारे हजरत जी ने कई दफ़ा ये वाक्य बताया और अपनी किताबों में लिखा है कि मैंने अपने बारे में फरमाया कि मैं सलूक का जो रास्ता, जिक्र का जो रास्ता था, इसमें मैं कई दफ़ा आता था और एक ऐसे मकाम पर आके रुक जाता था, आगे नहीं जा पहुँच पाता था और बस सिर्फ दुआ मांगना शुरू करता था और दुआ की बरकत से अल्लाह ताला मुझे आगे पहुंचा दिया करते थे। तो चाहे इल्म हो, चाहे जिक्र हो, चाहे दीन की खिदमत हो, हमें अगर रास्ते में बढ़ते चले जाना है ना, आगे बढ़ना है, तो कई दफा इंसान अपनी मेहनत और कोशिश की वजह से नहीं पढ़ पाता, बल्कि अल्लाह ताला दुआ और आजिजी को देखना चाहता। तो हम भी अपनी मेहनतों के साथ साथ अल्लाह ताला से दुआएं मांगें। دعاؤں کا ذوق ہے نا, دعاؤں کا شوق ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیان تو لمبا ہو گیا کافی, لیکن بات اہم تھی اور اللہ کرے ہمارے دلوں میں بات ہوتا رہ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ایمان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, اس کو بچانے کی بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایمان کو کامل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کی جتنی ایمان کی علامات ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے. وہاں سے